जय कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ जगिरे वरधारी, जय गिरीवर धारी। गोपी जन वल्लभ जगिरीवर धारी, जगिरीवर धारी। यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा वन चारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज श्रीमद्स डिवाइन ग्रीस श्रीलाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन विपिड संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्योदरक्ष श्रीमद्स डिवाइन ग्रीस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य शिलहरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड श्री गिरिगोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, जय दशहरा महोत्सव की, तागोर प्रेमानंदे, ऑल गुरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल गुरिस्ट श्री गुरु एंड श्री गौरांग। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम विजय दशमी महोत्सव के उपलक्ष में नवम स्कंद भागवत के 11वें अध्याय से श्री भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन नंबर 23। पुरुषो रामचरितम् श्रवणै उपधारयन् आनृशंस्य परः राजन् कर्मबन्धै विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस परो राजन् कर्म बंधैर् विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैर् उपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर् विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैर् उपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर् विमुच्यते।
परो राजन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर् विमुच्यते।
Matajis. पुरुषो कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवणय कानों से उपधारयन श्रवण करके आनृशंस्य परः ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित, कर्म बंधई सकाम कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके सर्वोच्च संरक्षण हैं, अतएव वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। तो आज श्री राम विजयदशमी के महोत्सव के उपलक्ष्य पर रामायण से हम लोग चर्चा करेंगे। नवम स्कंद भागवत में इसका संक्षिप्त वर्णन आया है, क्योंकि महाराज परीक्षित आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए यमुना के तट पर बैठे थे और उनके पास 3 दिन से अधिक समय नहीं था, और इसलिए अगर सुखदेव गोस्वामी विस्तृत रामायण का वर्णन आरंभ करते तो फिर काफ़ी अधिक समय बीत जाता। इसलिए उन्होंने संपूर्ण रामायण को संक्षिप्त रूप में 2 अध्यायों में भी उसे परिपूर्ण किया। तो हम देखते हैं कि रामायण वेदों का सार गर्भ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन आता है, वैकुंठे तपरे लोके श्रिया श्रद्धाम जगतपति ही आस्ते विष्णुर अचिंत्यात्मा भक्तैर भागवतैः सह। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम में वैकुंठे तु परे लोके, अपने परलोक वैकुंठ में स्थित हैं। श्रिया सार्धम जगतपति, संपूर्ण जगत के स्वामी श्रिया अर्थात लक्ष्मी देवी के सान्निध्य में स्थित हैं। आस्ते विष्णुर अचिंत्यात्मा, वो भगवान किस प्रकार अपनी दिव्य विभूति को परिलक्षित करते हुए चिन्मय जगत में और साथ साथ इस जड़ जगत में अपनी शक्तियों के माध्यम से साथ साथ समाविष्ट रहते हैं, इसको समझना अचिंत्य है। भक्तैर भागवतैर सह, और वहाँ उनके भागवत भक्तगणों के सान्निध्य में वैकुंठ में लीला प्रसारण कर रहे हैं। तो भगवान देखते हैं वैकुंठ में दृष्टिपात करते हुए कि यहाँ पर श्री हैं जो हमारी सेवा में लगी हैं। फिर भगवान देखते हैं कि यहाँ पर हमारे नित्य सिद्ध भक्त हैं जो सनातन काल से हमारी सेवा में लगे हुए हैं और कभी किसी भौतिक तत्व के संस्पर्श में नहीं आए, प्रसन्न होते हैं उनको देखकर, नित्य सिद्ध। फिर भगवान की दृष्टिपात पड़ती है पूर्वबद्ध जीवों पर जो पहले भौतिक जगत का चोट चखकर आए हैं। क्षुत परी तो यथा दीन सारमय गृहम गृहम चरण विंदंत यदृष्टम दंडम ओदनम एववा, इस भौतिक जगत के कर्मानुसार भ्रमण करते हुए जीव विभिन्न प्रकार के दुर्दशाओं के बीच परेशान होने के बाद फिर भगवान का आश्रय लेकर फिर भगवत धाम में प्रविष्ट होता है। तो ऐसे जीव जो दीर्घ काल तक भौतिक जगत की लाते खाते हैं फिर उनको सद्बुद्धि आती है। तो इसलिए कहा गया कि जब तक सीता देवी प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में पूर्णतः तल्लीन होकर सेवा कर रही थी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस क्षण सीता देवी की दृष्टि उस स्वर्णिम मृग की ओर गई, क्षण भर में सीता देवी ने विचार किया, संकल्पबद्ध किया कि मैं इस स्वर्णिम हिरण को अपने साथ अयोध्या ले चलूंगी, और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर जैसे ही वो स्वर्णिम मृग की ओर सीता देवी का ध्यान जाता है और बारंबार प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा उल्हाना देने पर भी वो उस बात को स्वीकार नहीं करती, वो कहती है नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए, और तब जाकर रामचंद्र जी उस मृग के पीछे पीछे जाते हैं और तब सीता देवी का अपहरण किया जाता है रावण के द्वारा। तो इसलिए ये कहा गया है वेदांत देशिका जो कि बहुत बड़े रामायण के ऊपर टीकाकार हैं, तो उनका ये विचार है, ये मत है कि सीता देवी एक दृष्टि से श्री या लक्ष्मी देवी तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इस संदर्भ में वो जीव का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और जीव होने के नाते जिस क्षण जीव भगवान के चरणों के प्रति अपना ध्यान समाप्त करता है उसी क्षण मन रूपी रावण अपने पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय के साथ उसे हस्तगत करके लंका रूपी शरीर में बद्ध करता है भवसागर के बीचों बीच। और ऐसी अवस्था में वो जीव भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में तड़पता रहता है, परेशान रहता है, और ऐसी अवस्था में भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में भी एक शंका होती है कि ये जीव हमसे दूर क्यों हुए, क्या हमारी सेवा में उनको पूर्णतः सम्मान और आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो जब दो लोगों के बीच में संबंध स्खलित होता है, कुछ किसी प्रकार से संबंध में कमी आती है, कुछ कलह उत्पन्न होता है, कुछ मतभेद उत्पन्न होता है, जब मन मुटाव होता है तब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ शंकाएं होती हैं, और इसलिए दोनों को एक दूसरे के समक्ष जाकर खुलकर स्पष्ट रूप से अपने हृदय को व्यक्त करना कठिन होता है। तो इसलिए उन दोनों के बीच ये जो दरार आ जाती है, संपर्क में दरार,
एक दूसरे के बीच वार्तालाप में दरार, इसको पूर्ण करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति प्रकट होता है। और जब कोई तीसरा व्यक्ति, जिसको मध्यस्थ कहो या मीडिएटर कहो, वो जब दोनों की बातों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब संशय समाधान होने की संभावना होती है। तो इसलिए इस भौतिक जगत के सामान्य, हमारे सामाजिक संबंधों में भी इस प्रकार के संबंध में फूट संभावित होते हैं, और ऐसी अवस्था में मध्यस्थ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगर व्यक्ति मनमुटाव के बाद भी एक दूसरे के साथ स्पष्ट ही चर्चा कर ले, तो फिर मध्यस्थों की और मीडिएटर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये हो नहीं पाता, इसलिए बीच में कोई हस्ताक्षेप करता हुआ व्यक्ति आवश्यक है। इसीलिए जब सीता देवी रामचंद्र जी से दूर चले जाती है, रामचंद्र जी को अपने इस मानवी लीला के अंतर्गत इस बात का पूरा अनुसंधान नहीं कि सीता देवी क्यों गई, कहाँ गई, कैसे गई, या किसी राक्षस ने, असुर ने उसे बलपूर्वक हस्तगत किया है, या सीता देवी मेरे संबंध में कुछ असंतुष्ट थी जिसके कारण वो हमें छोड़कर कहीं चली गई, या सीता देवी अन्य किसी कारण से परेशान थे कि वन के हर प्रकार के जो परेशानियों को झेलते हुए सहन नहीं कर पाई। तो जब किसी कारण के विषय में अनिश्चितता होती है, तब मन में कई प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं कि वो व्यक्ति क्यों, कहाँ, कैसे चले गए। तो इसलिए रामचंद्र जी सीता देवी के विरह में तड़प रहे थे और उच्च स्वर में आर्तनाद कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र जी के मन में एक इच्छा थी, एक विचार था कि ये न के न प्रकारे न उनके साथ संपर्क स्थापित करें और पति होने के नाते अपना धर्म पूरा करें और उसके संरक्षण के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाएं। तो रामचंद्र जी ने प्रयत्न आरंभ किया, सीता को किस प्रकार हम ढूंढें। तो चाहे किसी भी कारण से जीव आध्यात्मिक दिव्य जगत से चला क्यों नहीं जाता, लेकिन भगवान उस जीव को भूलते नहीं और भगवान प्रयत्नशील रहते हैं। यहां तक कि जीव इस भौतिक जगत में दुखाले अशाश्वत में परेशान रहता है, पीड़ाग्रस्त रहता है। क्षुत्र त्रिधातु बिर इमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्ण वात वर्षेर इतरेतराच कामाग्निना अच्युत रुषाच दुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे इस जीव को हर प्रकार के पीड़ा देने के लिए बाध्य किया है इस भौतिक जगत में, और संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में, जीव के इस पीड़ा की दशा को देखकर मेरा मन विदीर्ण हो उठ रहा है। तो वास्तव में इस जीव को बहुत बुरी तरह से त्रस्त किया जाता है इस जगत में, और जीव बहुत बुरी तरह परेशान रहता है, शोकाकुल रहता है, लेकिन इस जीव से कहीं गुना अधिक भगवान उस जीव के विरह में शोक पीड़ित रहते हैं। तो ये रामायण जो है इस सिद्धांत को ध्वनित कर रहा है। और जब हम देखते हैं अरण्य कांड में प्रभु रामचंद्र जी किष्किंधा कांड से पूर्व, प्रभु रामचंद्र जी चिल्ला रहे हैं सीता देवी के विरह में पागल हैं, और तत्पश्चात जब तक वो किष्किंधा में आते हैं, लक्ष्मण रामचंद्र जी को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामान्यतया राम और लक्ष्मण की तुलना की जाए तो रामचंद्र जी अपनी भावनाओं पर बड़ा नियंत्रण रखते थे और लक्ष्मण घड़ी घड़ी उत्तेजित हो जाते थे। पूर्व इतिहास का इस प्रकार का जो देखा गया था, तो कभी भी लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते तो लक्ष्मण हर प्रकार का संकल्प ले लेते। जैसे जब अयोध्या से आए और उनको छोड़कर जब जा रहे थे सुमंत्र, तो उन्होंने कहा कि कोई संदेश है तो बताइए, और इस बात को सुनकर जो लक्ष्मण ने कह दिया सुमंत्र को कि अगर आप लौट कर जा रहे हो और दशरथ महाराज को ये संदेश दे देना कि आज के बाद दशरथ महाराज मेरे पति नहीं, दशरथ महाराज मेरे पिता नहीं, दशरथ महाराज का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, दशरथ महाराज मेरे दृष्टिकोण से मृत हैं, तो ये लक्ष्मण इतना उत्तेजित होके बोले और सुमंत्र भी झटका खाए। और जब दशरथ महाराज ने पूछा कि कोई संदेश है क्या, तो सुमंत्र भी विचार में पड़ गए कि बताएं कि नहीं बताएं। और तब जैसे ही उन्होंने अपने संदेश को व्यक्त किया कि लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा है, तब उस समय दशरथ महाराज का हृदय अवरुद्ध हो गया और वो धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। तो लक्ष्मण की ये आदत थी कि उत्तेजित हो जाते थे, उच्च स्वर में बोला करते थे। जब भरत आए तो उस समय भी वो उत्तेजित हो गए थे और रामचंद्र जी ने कहा कि ऊपर जाके देखो, तो ऊपर केवल वृक्ष के ऊपर चढ़कर वो देख रहे थे कि दूर से कौन सी सेना आ रही है। तो भरत महाराज के जो पताका को देखकर वो चिल्लाने लगे, भरत आपकी हत्या करने आ रहा है। और रामचंद्र बोले, पेड़ से उतरो और गुस्से को भी उतारो। और फिर कहे कि जब तक वो आकर स्पष्ट अपने हृदय की बात को व्यक्त न करे, आप कैसे सोच सकते हो? तो कपोल कल्पित धारणा हो गई, उनको आने दो। उन्होंने घोषित थोड़ी किया है कि मैं मारने के लिए आ रहा हूं, मिलने भी आ रहा होगा। लक्ष्मण कहे, अरे मुझे सब पता है, ये सब षड्यंत्र है, कैकेयी के षड्यंत्र का वो कठपुतली। और फिर रामचंद्र जी ने कहा, शांत हो जाओ। और जब भरत महाराज आकर रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए और रामचंद्र जी ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से भरत महाराज को आलिंगन किया और भरत महाराज अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे थे, तो रामचंद्र जी भी प्रेम से शोकाकुल होकर अपने अश्रुधारा से उनका अभिषेक करने लगे। तब भरत महाराज का आलिंगन करते हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर देखे, एक तरफ आलिंगन कर रहे थे, देख रहे थे लक्ष्मण को और कहने लगे, ये मेरा भाई भरत यहां पर आया है, अर्थात ये मेरा भाई है। और आप जैसे व्यक्ति जो भरत महाराज जैसे वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, मेरे भाई नहीं हो सकते। तब फिर लक्ष्मण को फिर झटका कि रामचंद्र जी ने उनको इस प्रकार से तिरस्कृत किया। और फिर जब वाली के वध के पश्चात जब सुग्रीव दीर्घ काल तक अनुपस्थित थे, चातुर्मास में माल्यवंत पर्वत पर बैठकर प्रभु रामचंद्र जी वर्षा ऋतु के हर चिन्ह को देखकर केवल सीता देवी का स्मरण कर रहे थे। वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही थी लेकिन रामचंद्र जी को लग रहा था ये सीता देवी की अश्रुधारा है। चारों तरफ जब आंधी तूफान मचता था, उनको लगता था ये सीता देवी की करा है, सीता देवी चिल्ला रही है। तो इस प्रकार पीड़ित अवस्था में वो प्रतीक्षा कर रहे थे और लक्ष्मण कह रहे थे कि बस कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, सुग्रीव आता ही होगा। चातुर्मास के चार महीने निकल गए, मॉनसून शेड भी निकल गए, लेकिन फिर भी सुग्रीव का कोई अता पता नहीं। तो अब रामचंद्र जी लक्ष्मण के देखते देख प्रथम बार उत्तेजित हो गए और रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण को कि देखो, उस सुग्रीव ने संकल्प लिया था कि वो मेरी सहायता करेगा, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, वचन दिया था, लेकिन देखो पूरे चार महीने चातुर्मास के हो गए लेकिन अब तक वो आए नहीं अपनी सेना के साथ। लक्ष्मण, मैं तुमको आदेश करता हूं कि तुरंत जाओ और सुग्रीव को यह समाचार दो। लक्ष्मण ने कहा, क्या समाचार? और रामचंद्र जी ने कहा, ये न संकुचिता पंता ये न वाली हतोगता, समये तिष्ठ सुग्रीव मां वाली हतम अन्वगा। लक्ष्मण, तुम जाके उसको ये समाचार दो कि जिस मार्ग से हमने वाली को मृत्युलोक भेजा वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो इसको सुनकर लक्ष्मण बड़े प्रभावित होते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं रामचंद्र जी से कि भाई गुस्सा होने का अधिकार तो मेरा है, लेकिन पहली बार इनको देख रहा हूं मूड में है। तो लक्ष्मण और मूड में आके बोलते हैं, प्रभो संदेश क्यों, मार ही डालता हूं उसको। तो रामचंद्र कहते नहीं नहीं मारो मत, केवल संदेश दो, हो सकता है संदेश सुन के सुधर जाए। तो इसलिए जब भी उत्तेजना की बात आती थी तो लक्ष्मण हमेशा उत्तेजित होते थे, लेकिन रामचंद्र जी सीता के विरह में इतने उत्तेजित थे और इस सिद्धांत को ध्वनित करना चाहते हैं कि जब जीव हमसे दूर चला जाए तो भगवान कितने पीड़ित रहते हैं शायद जीव को इस बात का कोई आभास नहीं। इसलिए यहां पर वर्णन आया है, एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्य माहे स्वकर्म भी जीवे दुखा कुले विष्णु कृपा कापि उपजायते। तो यहां वर्णन आ रहा है एवं संस्कृति चक्रस्थे, तो वैकुंठ में बैठे भगवान नित्य सिद्ध पूर्वबद्ध इन दो जीवों को देखते हैं। पूर्वबद्ध जीवों को देखकर भगवान के मन में फिर वर्तमान बद्ध जीवों के विषय में चिंता होती है कि अभी जो इस भौतिक जगत में अटके हुए हैं उनका क्या हो रहा होगा। एवं संस्कृति चक्रस्थे, जो अब वर्तमान में इस भवसागर में त्रस्त हैं, भ्राम्यमाने स्वकर्म भी, जो अपने कर्मानुसार भ्रमण कर रहे हैं 14 लोकों में, जीवे दुखाकुले विष्णु, ऐसे जीवों के दुखाकुल अवस्था को स्मरण करके भगवान श्री विष्णु कृपा कापि उपजायते, भगवान श्री विष्णु के हृदय में कृपा उत्पन्न होती है और तब उस कृपा के कारण भगवान क्या करते हैं, विचित्र देह संपत्तिर ईश्वराय निवेदितुम। तो भगवान विचित्र देह संपत्तिर विचार करते हैं कि मैंने जीव को विभिन्न प्रकार के देह दिए, विचित्र देह संपत्तिर, इस देह को संपत्ति कहा गया है। इस भौतिक जगत में जीव को ये देह जो देते हैं भगवान अपने भौतिक शक्ति के माध्यम से, वो एक संपत्ति है। और वो कौन सी संपत्ति है, वो संपत्ति जिससे जीव अपने सौभाग्य का उदय कर सके। और वो क्या है, ईश्वराय निवेदितुम, वो ईश्वर ने, भगवान ने उन्हें दिया है। भगवान की सेवा करने के लिए ये शरीर दी गई है। पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता, तो भगवान ने कई हाथ कई पैर इत्यादि इस शरीर में दिए हैं, मन दिया है, जिससे भटकता हुआ मन और भटकता हुआ जीव येन केन प्रकारेण भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की सेवा में लग जाए और भगवान के साथ अपने संबंध को स्थित कर सके। तो इसीलिए भगवान देखते हैं कि ये शरीर मैंने दिया है मेरी सेवा करने, लेकिन जीव का मन यहां वहां भटक रहा है, दूसरी ओर चला गया। और भगवान विचार करते हैं कि जैसे नदी में डूबते हुए किसी व्यक्ति को अगर हमने एक नौका दी, नदी में डूबते हुए व्यक्ति को अगर हमने एक नाव दिया तो हम अपेक्षा करेंगे कि वो व्यक्ति नाव में बैठकर अपना बचाव करे, लेकिन अगर वो व्यक्ति इतना मूर्ख हो कि वो नाव में उठकर बैठने के बाद धरती में आने के बदले उस नदी के माध्यम से ही उस नाव को समुद्र की ओर लेके चलता है और फिर समुद्र में जाकर समुद्र की लहरों से फिर वो नाव को डुबाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? नौका तो दिया लेकिन मौका का लाभ नहीं लिया। तो भगवान यही सोचते हैं कि भाई शरीर दिया है, इसका प्रयोग करके मेरे पास आने, लेकिन इसी का प्रयोग कर रहा है भवसागर में और डूबने के लिए। तो तब भगवान विचार करते हैं कि इस जीव के भटकते हुए मन को शासन में लाना होगा, नियंत्रित करना होगा। द जीवा हैज टू रेगुलेट हिज थॉट्स एंड एक्टिविटीज। रेगुलेशन अर्थात संयम और नियंत्रण की आवश्यकता है, और साथ साथ अगर उसे ये अनुशासन करना हो तो ये शिक्षा उनके हृदय में प्रकट करनी होगी। इसीलिए शासनात् अर्थात कैसे जीव अपने विचारों को शासन करे, इस शब्द से प्रकट होता है शब्द शास्त्र। शासनात् इति शास्त्रम्। तब भगवान जीवों के समक्ष वेदों का ज्ञान प्रकट करते हैं और ये विचार करते हैं कि जीव इन वेदों को स्वीकार करे और अपने भावनाओं को और अपने इंद्रियों को, अपनी आदतों को नियंत्रित करें। तब वेदों को देने के बाद भी भगवान देखते हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। वेदों के इस शब्द को, अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए क्योंकि ये भली भांति वेदों के अर्थ को नहीं समझ पा रहे, उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं और वेदों के आधार पर और भोग विलास कर रहे हैं, क्योंकि ये जीव का ये इस प्रकार की आदत ही है। और इसलिए व्यासदेव जी को नारद मुनि कहते हैं जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासित सुहावरक्तस्य महान व्यतिक्रम, कि आपने इन जीवों के भोग करने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया इन सब विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को रखकर। तो इसलिए इनको हम कैसे समझाएं? तो भगवान विचार करते हैं कि इनको समझाने के लिए शास्त्र पर्याप्त नहीं, मुझे स्वयं प्रकट होना होगा और इन्हें शिक्षा देनी होगी। और इसलिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने उदाहरण के माध्यम से, व्यवहार से सिखाने के लिए। तो तब भगवान त्रेता युग में चार रूपों में प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर विचार करते हैं कि जीवों को हम सामान्य सामाजिक धर्म की शिक्षा देंगे। समाज में, परिवार में जो सामान्य शिष्टाचार का अनुपालन कैसे करें, उचित व्यवहार, एक पत्नी व्रत, पिता के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता, ये सभी सामान्य सामाजिक पारिवारिक धर्मों को प्रस्तुत करने रामचंद्र आए। दिव्य विभूति भौतिक नियमों को स्पष्टीकरण करने आए। फिर उनके उसके बाद उनसे प्रकट हुए उनके अंतरंग पार्षद कैंकर्य धर्म अर्थात प्रभु के, भगवान के चरणों के प्रति किस प्रकार सेवा शत प्रतिशत 24 घंटे क्षण क्षण कैसे किया जाए। जीवेर स्वरूपो कृष्णेर नित्य दास, कैंकर्य धर्म को सिखलाने के लिए प्रकट हुए लक्ष्मण। अर्थात एक तो हुआ सामाजिक धर्म और ये हो गए भगवत अर्थात कैंकर्य धर्म। फिर भरत प्रकट हुए ये प्रस्तुत करने कि किस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्णता आश्रित होना चाहिए, जिसको कहते हैं प्रपत्ति धर्म। और प्रपत्ति धर्म को स्पष्ट करने भरत प्रकट हुए। और फिर शत्रुघ्न आए, शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत, क्योंकि भरत का अर्थ है भारवाही इति भरत, भारवाही इति भरत, राज्य भरणात्। भरत महाराज इस बात को प्रकट करने आए कि भगवान की भक्ति करते समय कभी अनुकूल परिवेश होगा, कभी प्रतिकूल, कभी हम लोकप्रिय होंगे, कभी लोगों के हम आलोचना के पात्र बनेंगे, कभी लोग हमारी सेवा की स्तुति करेंगे, कभी उसकी निंदा करेंगे। तो भरत महाराज का कैकेयी के षड्यंत्र के साथ कोई तालमेल नहीं था, उसमें कोई उनका भाग नहीं था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी क्योंकि वो उनके पुत्र थे और कैकेयी ने भरत महाराज की ओर से रामचंद्र जी को वनवास कराया था, इसलिए संपूर्ण अयोध्या में इस बात की भावना थी कि भरत महाराज ही इसके पीछे मूल कारण है। तो जब भरत महाराज लौट के आए और तब दशरथ महाराज का देहांत हो चुका था और दशरथ महाराज के मृत शव को चिता देने के लिए, चिता पर आग देने के लिए जब वो गए, तब वशिष्ठ जी ने उनको रोका और भरत महाराज को कहा, रुक जाइए, आप यहां पर अंतिम संस्कार करने आ गए लेकिन अंतिम संस्कार करने का अधिकार आपको नहीं है। भरत महाराज ने कहा, अब अग्रज रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में बड़ा भाई तो मैं हूं, तो फिर पिता के मृत शव को अंतिम संस्कार मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, बड़े खेद की बात है भरत महाराज कि मृत्यु के क्षण, अंतिम क्षण, दशरथ महाराज ने अपने अंतिम इच्छा व्यक्त की और हम सभी को कहा कि रामचंद्र जी के इस वनवास के पीछे मूल कारण कैकेयी और उसके साथ सम्मिलित हुए भरत महाराज, ये भरत महाराज में पाखंडी और कपटी हैं और मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है, मेरे अंतिम संस्कार के समय मेरे मृत शव का भी अग्नि के माध्यम से भी उसका स्पर्श न हो, उसने मेरे पूरे परिवार को कलंकित किया है, ये संदेश उसे दे देना। और इस प्रकार भरत महाराज की कठोर शब्दों में भर्त्सना करके दशरथ महाराज अपना शरीर त्याग गया। अब सोचिए, जिस दशरथ महाराज के प्रति पुत्र होने के नाते भरत महाराज का एक स्वाभाविक मोह था, प्रेम था, वात्सल्य था, और वो गए थे अपने मामा के घर पर और लौट के आए, तब तक अनायास बिना किसी कारण पता पड़ा कि पिताजी ने ऐसे अभिश्राप देते हुए शरीर त्याग दिया। अब उस अभिश्राप के विषय में विचार करके कि उनके पिताजी के मन में कितनी पीड़ा और उस पीड़ा के कारण उन्होंने देह त्याग किया, अर्थात परोक्ष रूप से पिता के मृत्यु का भी मैं कारण बनता हूं, इस विचार के भार को लेकर उनको जीवन भर बिताना था। तो इसलिए कभी कभी लोगों के दुर्विचार, अभिश्राप और संबंध का स्खलन होना वो किसी शारीरिक भार से भी अधिक पीड़ा का कारण बनता है, मानसिक भार। तो भरत महाराज को अब समय निकालना था ये विचार करके कि पिताजी ने मेरे प्रति ऐसे विचार पाले थे, और तब जब उनके हृदय को पीड़ा हुई, ऐसा लगा कि उनके हृदय के ऊपर वज्रपात हो गया, ऐसी अवस्था में भरत महाराज कुछ नहीं बोले, शांत मुद्रा धारण किए, शत्रुघ्न के हाथों दशरथ महाराज के अंतिम संस्कार हुए, और अंतिम संस्कार होने के पश्चात वशिष्ठ ऋषि भरत महाराज को देखकर बोलते हैं कि आइए, अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है राजन। और जैसे ही कहते हैं राजन, भरत महाराज वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं, अरे चोर कहीं के, तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, तुम एक नंबर के चोर हो। अब भरी सभा में वशिष्ठ ऋषि जैसे सम्मानित किसी ऋषि को चोर कहना, वशिष्ठ ऋषि भी झटका खाए और कहने लगे, अरे आप मुझे चोर कह रहे हो, क्या हो गया? अंतिम संस्कार करने नहीं थे इसलिए क्या? मुझे चोर इस तरह क्यों कह रहे हो? तब भरत महाराज ने कहा, मेरे जीवन में केवल एकमात्र संपत्ति है प्रभु रामचंद्र जी के चरणों के प्रति सेवा और उनका स्मरण, और चाहे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति क्यों ना आए, मैं उनके चरण कमलों का स्मरण और उनके चरणों की सेवा को क्षण भर के लिए त्याग नहीं सकता। और आप अगर अयोध्या नगरी का मुझे राजा बना दोगे तो रामचंद्र जी के प्रति मेरी सेवा भाव में और उनके प्रति आश्रित होने के भाव में स्खलन होगा, मैं उनके ऊपर आश्रित नहीं हो सकता, मेरे प्रपत्ति भाव में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, इसलिए आप रामचंद्र जी के प्रति मैं जो आश्रित होने के लिए इच्छा रखता हूं उस इच्छा को आप लूट रहे हो। उनकी सेवा ही एकमात्र संपत्ति है, उनके प्रति आश्रय वही मेरे एक संपत्ति है, उस आश्रय को छीन लोगे तो आप चोर नहीं तो क्या हो? जो मेरी संपत्ति छीन ले मेरे अनुमति के बिना उसे चोर ही तो कहते हैं। तो इस प्रकार भरत महाराज प्रपत्ति धर्म अर्थात जीवन में भक्ति करते समय कई बार अनुकूल परिवेश, कभी प्रतिकूल परिवेश, लेकिन हमें इस भौतिक जगत में सहनशील होकर सेवा करते रहना है, और भरत महाराज के प्रतीक थे इसलिए अयोध्या में रामचंद्र जी की ओर से वो राज्य पालन करने गए तो नंदीग्राम में रहते थे। वल्कल वस्त्र धारण कर, जटाजूट धारण कर, वो एक सामान्य ऋषि के वेश में धारण कर राज्य का उत्तरदायित्व संभाले, लेकिन राज्य के और राजा के किसी भी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं किए, और वो बिल्कुल वहां बैठकर रामचंद्र जी के जो पादुकाओं को वहां रखकर उनकी सेवा में रत रहते थे, और प्रतिदिन वो बहुत ही सामान्य भोजन प्राप्त करते थे, कंदमूल इत्यादि, और सरयू नदी के जल से प्राप्त जो कुछ भी वो थोड़ा बहुत पी लेते थे, और इस प्रकार वो जीवन व्यतीत किए। तो वर्णन आता है कि प्रतिदिन का स्नान वो प्रातःकालीन 1 बजे करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या नगरी के निवासी अगर प्रातःकालीन इन्हें देख लेते, अयोध्या नगरी के निवासी भी 3-4 बजे स्नान करने सरयू में आते थे, और जो भी अयोध्या वासी भरत महाराज को देख लेते और उनका दर्शन कर लेते तो हाथ में पत्थर उठाकर गालियां देते हुए उनको पीटते थे और कहते थे कि यही वो अपराधी है जिसने रामचंद्र जी को निष्कासित किया है, मारो इस शैतान को। कहने के लिए राजा थे लेकिन लोग उनके प्रति इतना क्रोध रखते थे कि अपने हाथ में पत्थर ले लेके मारे। इसलिए राम दरबार में किसी भी मंदिर में आपको भरत महाराज का विग्रह नहीं दिखेगा, राम दरबार में केवल सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी। तो भरत महाराज को लोकप्रियता नहीं मिली, भरत महाराज को लोगों का प्रोत्साहन नहीं मिला, भरत महाराज को उनके सेवा के प्रति लोगों की सम्मति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन भरत महाराज को रामचंद्र जी की सेवा का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए भरत महाराज अपने आदर्श से, अपने चरित्र से वर्णन करते हैं कि सेवा और स्वीकृति दोनों में कोई संबंध नहीं है, और भले कई वैष्णव भी आपकी सेवा को स्वीकार न करें कई कारणवश, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी अगर जानते हैं कि इनका हृदय निर्मल है और उनकी सेवा स्वीकार करें तो फिर उनकी सेवा सफल है। तो अयोध्यावासी सब वैष्णव थे और अयोध्यावासियों में मतभेद था। कई लोग कहते थे नहीं नहीं इनका कोई हाथ नहीं था इसमें, कई लोग कहते अरे छोड़ो हम जानते हैं इसके पीछे इन्हीं का हाथ था, और कौन हो सकता है, कई कई को इतनी अक्ल है क्या, उसको थोड़ी राजा बनना था, राजा तो इनको ही बनना था। तो इस प्रकार कई अफवाहों के दलदल में जो अयोध्या के कई निवासी फंसे हुए थे, धंसे हुए थे, उससे कभी वो निकले नहीं और कभी उन्होंने भरत महाराज को वो सम्मान भी नहीं दिया, उन्हें स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन भरत महाराज की सेवा उस परिवेश में भी चलती रही। परिवेश भारी था भावनात्मक दृष्टिकोण से, लेकिन उस भार को वहन करते हुए वो सेवा करते रहे, सेवा को नहीं छोड़े। उनकी तुलना में लक्ष्मण जी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल 100% निर्मल, स्पष्ट, लॉयल, हाँ उसमें किसी का कोई संदेह नहीं। तो ठीक है, राम दरबार में उपस्थित, तो इसलिए कैंकर्य लक्ष्मण प्रस्तुत करते हैं और प्रपत्ति भरत महाराज प्रस्तुत करते हैं, अर्थात सेवा करते हुए कभी अनुकूल प्रतिकूल कोई भी अवस्था आए हम भगवान पर ही आश्रित रहेंगे। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन, विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। कि भगवान की सेवा करते हुए हमें हमेशा कोई विपत्ति भी आ जाए, जो यह स्मरेत मधुसूदन, भगवान मधुसूदन का स्मरण करे, विपत्तौ तस्य संपत्ति, उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी जब भी भरत महाराज लोगों के दुत्कार सुनते थे, उनकी आलोचना सुनते थे, उनके हाथों उनके जो पत्थर उनके मस्तक पर चोट पहुंचाता था, और तब भरत महाराज कभी अपने मुख से रामचंद्र जी के प्रति गाली नहीं निकाले कि अरे तुम्हारी सेवा में लगा हूं ये क्या कर रहे हो। रामचंद्र जी का स्मरण करते करते रामचंद्र जी के प्रति उनके अनुकूल भक्ति में किसी प्रकार से बाधा नहीं आई। लोगों का आदान प्रदान उनके प्रति प्रतिकूल था, लेकिन उसको सहन करते हुए भरत महाराज का रामचंद्र जी के प्रति सेवा अनुकूल रही। तो ये नहीं सोचा कि अरे अयोध्या वासी जिनका प्रशासन हम कर रहे वही गाली दे रहे हैं, बेड़ा गर्त हो इनका, और उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं लिया कि जिससे बाढ़ आ जाए और पूरा शहर ही ध्वस्त हो जाए, अकाल पीड़ित हो जाए, या पूरा जो ग्रेन्स का स्टॉक था उसको बंद कर दिया और बोले मरने दो देखते हैं फिर, ऐसा कोई भाव नहीं था उनके अंदर। यहां तक कि रामचंद्र जी के पादुका को लाकर उन्होंने राज सिंहासन पर रखा था, और आचार्य कहते हैं कि जब लोग आते थे कि हम लोग टैक्स भरने आए हैं तो उसको तुरंत ले लेते थे, और लोग अब लेके आते थे प्रस्ताव कि भाई ये खर्चा करना है तो कहते थे पादुका को पूछो, अब पादुका क्या उत्तर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि बहुत विचार कर करके, कंजूसी कर करके उन्होंने जब तक रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद लौट के आए अयोध्या के राजकोष को लगभग 14 गुना और बढ़ा दिया था, इतना उन्होंने इस तरह से पूरा मैनेज किया। तो भरत महाराज अपनी दृष्टि से अनुकूल सेवा कर रहे थे, अयोध्या वासियों के हित के लिए सेवा कर रहे थे, तो इसलिए उनको प्रपत्ति का वर्णन बताया गया है। और अब चौथे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत। शत्रुघ्न अर्थात वो जिन्होंने शत्रु का दमन किया। अब प्रश्न उठता है कौन से शत्रु का दमन किया, पूरे जीवन में एक ही शत्रु का दमन किया, लवणासुर। एक असुर को मारने के लिए शत्रुघ्न नाम देना थोड़ा अधिक हो जाता है कि नहीं। अगर किसी को कहे यू आर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इनकारनेट, बोले अच्छा कितना बुक बांटा है, वन स्मॉल, वो भी डिस्काउंट में तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि परिहास हो गया, व्यंग है क्या, सार्कैज़म है क्या। हाँ, शत्रुघ्न तो ठीक है, रामचंद्र ने कई का वध किया, लक्ष्मण ने भी कईयों का वध किया, अब शत्रुघ्न ने एक का वध किया, उसके लिए शत्रुघ्न। तो उन्होंने अपने अहंकार रूपी शत्रु का दमन किया, और अहंकार का दमन करने के कारण निरंतर शत्रुघ्न भरत महाराज की सेवा में लगे रहे। तो इसलिए रामचंद्र जी सामाजिक धर्म के या सामान्य धर्म के प्रतीक रहे, लक्ष्मण कैंकर्य धर्म, भरत महाराज प्रपत्ति धर्म, और शत्रुघ्न वैष्णव धर्म, वैष्णव सेवा धर्म। तो इसलिए यहां पर इन चारों के विषय में अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण भागवत भगवत सेवा, भरत महाराज भगवत आश्रय, शत्रुघ्न भागवत सेवा, और रामचंद्र जी आज्ञा सेवा। अर्थात जो भी सामाजिक हमारे कर्तव्य हों उसके अंतर्गत जो भी आज्ञा मिले उसका हम आश्रय ले, आज्ञा आश्रय। तो इसलिए यहां पर ये वर्णन आता है कि इन सब बातों को विचार करते हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ आए कि जो जीव शरीर प्राप्त करके भी, जो कि शरीर रूपी नौका को प्राप्त करके भी नदी पार नहीं कर रहे बल्कि समुद्र में जाकर डूब रहे हैं, उनको मैं और शिक्षा दूंगा अपने उदाहरण से। वाल्मीकि नाच यत प्रोक्तम रामोपाख्यानमुत्तमम ब्रह्मणाचोदितम तत्च शतकोटि प्रविस्तरम। तो कहा गया है वाल्मीकि नाच तत् यत प्रोक्तम रामोपाख्यान विस्तरम, रामोपाख्यान उत्तमम। ये रामचंद्र जी की जो लीला है उपाख्यान, रामोपाख्यानम उत्तमम, ये उत्तम है, त्रिगुणातीत है। रामचंद्र ने जितनी लीलाएं की ये तीनों गुणों से परे है। वाल्मीकि नाच यत प्रोक्तम, ये वाल्मीकि ऋषि ने ये सुनाया। वाल्मीकि नाच यत प्रोक्तम, तो वाल्मीकि जी को किसने सुनाया, ब्रह्मणा चोदितम तच्च, ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया। शतकोटि प्रविस्तरम, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रामचंद्र जी के इन सभी लीलाओं को शब्दों में बद्ध किया, और कितने श्लोक, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों का सबसे पहला रामायण दिया गया। किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इसलिए ब्रह्मलोक में जाकर अगर बाई चांस अगर आप ब्रह्मा जी को पूछ लो थोड़ा रामायण सुनोगे क्या, तो स्केड्यूल देख के पूछना, क्योंकि उनके रामायण में कितने श्लोक हैं, 100 करोड़ श्लोक, शतकोटि प्रविस्तरम। आहृत्य नारदेनैव वाल्मीकाय निवेदितम्। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि 100 करोड़ तो इस भूलोक के लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। भूलोक अर्थात भूल लोक, सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा छोटा सा इनको 24,000 श्लोकों वाला जो है एक दे दिया जाए। तो इस प्रकार 24,000 श्लोकों वाला रामायण यहाँ पर दे दिया गया भौतिक जगत के हम सभी जीवों के लिए, जिससे कि हम लोग संतुष्ट रहें कि भाई कम से कम पन्ना तो घुमा सकते हैं, लाइब्रेरी में रख कर देख सकते हैं बीच बीच में जाकर। तो इसलिए 7 कांड है इसमें, 6 प्रमुख और 1 एक्स्ट्रा 7वां उत्तर कांड युद्ध कांड के आगे। तो ये जो शास्त्र है इसे कैसे समझना चाहिए? शास्त्रों को तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए, प्रश्न पूछते हुए और समर्पण करते हुए, सेवा समर्पण और सत्पृच्छा, ये शास्त्र को समझने के मार्ग हैं। तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सबसे पहले नारद मुनि आते हैं और बड़े प्रेम से नारद मुनि के समक्ष वाल्मीकि ऋषि ये प्रश्न पूछते हैं कि उपनिषदों में जिस परम ब्रह्म का वर्णन आया है वो परम ब्रह्म कौन है, कि वो 33 कोटि देवताओं में एक हैं या ये कोई और हैं, भिन्न हैं, वास्तव में परम ब्रह्म कौन है? तो ये उसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए रामचंद्र जी का यहां वर्णन आ रहा है कि रामचंद्र जी का रंग दुर्वा घास की भांति उनका रंग है, भरत महाराज का नील वर्ण है, शत्रुघ्न का और लक्ष्मण का स्वर्णिम वर्ण है। कभी उनको व्यूह बताया गया है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को, और कभी उनको भरत को शंख, शत्रुघ्न को चक्र और लक्ष्मण को शेष, ऐसे भी ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों में उनको बताया गया है। अब रामचंद्र जी का जो लोक है वो भी नित्य है, शाश्वत है। वैकुंठ भुवने नित्य निवसंति महोज्वला, अवतारा सदा तत्र मत्स्य कूर्मादयो खिला। तो मत्स्य कूर्म इत्यादि जितने भी अवतार हैं, राम इत्यादि, इन सभी के अपने लोक हैं, नित्य शाश्वत लोक हैं इनके। वैकुंठ भुवने नित्य निवसंति महोज्वला, तो ये वहां नित्य निवास करते हैं। अवतारा सदा तत्र, और ये सदा वहां अवतरित होते हैं। मत्स्य कूर्मादयो, मत्स्य कूर्म इत्यादि, ये भी इसी प्रकार है। तो तीसरे स्कंद में भी भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात वराहदेव अपने नित्य धाम में गए, जगाम लोकम स्वम अखंडितोत्सवम, अपने लोक में गए जहां पर अखंड उत्सव चलता है। वराहदेव का अपना लोक है, ऐसा नहीं कि भगवान बेघर हो गए इसलिए ढूंढते हुए यहां पर आते हैं, यहां वहां पर कुछ दिवाला निकल गया इसलिए फिर आते हैं, नहीं। समीद्र पुष्कर विस्तर आदि भी ही। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जी का भी नित्य धाम है, ये स्पष्ट है। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण को लेकर श्री संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम है श्री शैल पूर्ण। तो श्री शैलपूर्ण ने अपने शिष्य रामानुजाचार्य को तिरुपति बालाजी में जो अपना जो वेंकटाद्री, वहां पर कई दिनों तक रामायण के मूल तत्व के विषय में ज्ञान दिया। तो रामायण को श्री शैलपूर्ण ने श्रीपाद रामानुजाचार्य के समझ और भविष्य की पीढ़ियों के समझ में आने के हिसाब से 18 शिक्षाओं के रूप में बद्ध किया, 18 मेन लेसन्स। है कि नहीं? तो हम लोग 18 के ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, एक ही के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय में इन 18 रामायण के शिक्षाओं को सबसे प्रमुख माना जाता है। और इसके ऊपर श्री गोविंद राज नाम के जो आचार्य हैं उन्होंने विस्तृत टीका की है रामायण के ऊपर, और रामायण के जो चलते हुए प्रथम बालकांड के 5वें अध्याय के पूर्व अपनी टीका में उन्होंने इन 18 मुख्य शिक्षाओं के ऊपर टीका की। तो अब एक प्रश्न उठता है कि रामायण को कई बार लोग काव्य मानते हैं। रामायण डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार की शिक्षाएं कि सीता देवी ये थी और हनुमान जी फिर गुरु के रूप में आए और ये थे, ये बाकी जितने भी उसके संबंध में शिक्षाओं का वर्णन आ रहा है, ये डायरेक्ट रामायण के श्लोकों में तो नहीं दिखता, क्योंकि वो काव्य है। तो कविता है तो अर्थात वास्तव में उससे ये शिक्षाएं कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? तो एक बड़ा प्रमुख आचार्य वर्णन करते हैं सिद्धांत, वो ये कि वेदों में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? सबसे बड़ा सिद्धांत है वेदों का एक वाक्यता। एक वाक्यता का अर्थ क्या है? All Vedic principles harmoniously point towards the same conclusion. सारे वेदों की शिक्षाएं समन्वय के साथ एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करती हैं। इसको कहते हैं एक वाक्यता और समन्वय। तो एक वाक्यता के आधार पर वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो व्यासदेव जी ने भी रामायण के प्रति सम्मान व्यक्त किया, और इसलिए जो व्यासदेव का निष्कर्ष होगा, अगर वैदिक इतिहास का रामायण भी अंग है तो वाल्मीकि जी का भी उनके निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष नहीं हो सकता। इसलिए विदितं सहि धर्मज्ञं शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। सीता देवी ने उस समय रावण को कहा कि विदिता सही धर्मज्ञ, अरे रामचंद्र जी धर्मज्ञ हैं, अरे रावण समझो उनको, और क्या है? शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सल है रामचंद्र जी, तेन मैत्री भवतु ते, इसलिए उनके प्रति मैत्री व्यक्त करो। यदि जीवितुम इच्छति, अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो उनके प्रति मैत्री व्यक्त करना आवश्यक है। अर्थात सीता देवी रामचंद्र के गुणों को रावण के सामने भी व्यक्त कर रही थी और कह रही थी कि वो शरणागत वत्सल हैं, वो कृपालु हैं और आपको आश्रय देंगे, अगर आपको जीना हो तो उनका आश्रय लो। तो भगवान का आश्रय और भगवान की सेवा, यही वेदों का निष्कर्ष है, चाहे वो रावण को सुनाया जाए या अन्य किसी जीव को सुनाया जाए। तो रामायण काव्य होने के नाते, काव्य की विशेषता होती है कि कोई भी अगर कोई शब्द व्यक्त करे तो शब्द के व्यक्त करने के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है अभिधा, अभिधा अर्थात डायरेक्ट हमने जो कहा आपने समझ लिया। दूसरा होता है लक्षण, लक्षण अर्थात कुछ कहा लेकिन डायरेक्ट उसका अर्थ नहीं, गंगा गंगायाम घोषः, अर्थात गंगा पर ये गांव है, अर्थात गंगा के ऊपर तो गांव नहीं हो सकता, वो डूब जाएगा, अर्थात गंगा के तट पर गांव है, तो उसको कहते हैं लक्षण इनडायरेक्ट। अब एक तीसरा तत्व, 9th century में एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने प्रस्तुत किया और कहा कि लक्षण में भी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए शब्दों के माध्यम से काव्य में विशेष रूप से एक तीसरे प्रकार का तत्व प्रकट होता है जो भावनात्मक होता है। वो भी लक्षण की तरह ही है, लेकिन अंतर यह है कि उसके अंदर भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसको कहते हैं व्यंजन। तो व्यंजन को अंग्रेजी में कहते हैं सजेस्टिवनेस। और व्यंजन जब विशेष रूप से कवि कविता के साथ जुड़ जाए तो तब उसके अंदर जब ये भाव प्रकट हो जाए तब उसको कहते हैं ध्वनि। तो इसलिए संपूर्ण रामायण कविता है, लेकिन उस ध्वनि के भी अर्थ को प्रकट करने में जो सक्षम हो वो है आचार्य। तो इसलिए जितने भी रामायण से संबंधित, शरणागति से संबंधित, भक्तवत्सल्यता से संबंधित शिक्षाएं हैं जो आपको साक्षात श्लोकों में नहीं दिखेगा, आपको केवल कथा सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे जो शिक्षाएं प्रकट की हैं उसे कहते हैं ध्वन्यार्थ। उस ध्वनि के अर्थ को प्रकट किया है वो शैलापूर्ण जैसे आचार्यों ने, जो कि रामानुजाचार्य को सुनाए और फिर उनके ऊपर भी जो टीका की है, जिसका भावार्थ प्रस्तुत किया है, जैसे श्री गोविंदराज इत्यादि आचार्यों ने। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तो अब जो 18 मुख्य शिक्षाएं रामायण की प्रस्तुत की, उसमें से केवल प्रथम जो शिक्षा है उसके ऊपर हम लोग आज कुछ संकेत करेंगे। और वो प्रथम शिक्षा क्या है, वो ये कि प्रभु रामचंद्र जी, जैसे जो पहला प्रश्न पूछा वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से, कि जो उपनिषदों में परम सत्य का वर्णन किया वो परम सत्य कौन है, वो भगवान विष्णु है या देवताओं में कोई है। तो पहला तत्व जो रामानुजाचार्य को बताते हैं वो ये कि पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म वही विष्णु है, और वही विष्णु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं, वो रामचंद्र जी विष्णु से अभिन्न है। ये पहला तत्व है। तो इस तत्व को प्रकट किया है। तो इस तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयाम आस धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। तो सबसे पहले वर्णन आता है कि ये रामायण के अंदर तीन अद्भुत तत्व हैं। व्हाट मेक्स रामायण स्पेशल, रामायण एक अद्भुत ग्रंथ क्यों है, तो इसके अंतर्गत तीन अद्भुत बातें हैं रामायण के अंदर। पहली अद्भुत बात क्या है, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर ऑफ द ऑथर। जो लेखक हैं वाल्मीकि जी वो अद्भुत हैं। तो वो अद्भुत क्यों हैं, तो यहां पर ये इसलिए वर्णन किया जा रहा है, और ये सब बातें वाल्मीकि ऋषि स्वयं लिख रहे हैं, जिससे कि जो श्रोता हैं वो अद्भुत शब्द सुनकर और ध्यान दे और तल्लीन होकर सुने, और यहां वहां मन भटके उसको दूर करके वो पूरा मन एकाग्र कर सके। विज्ञापन के दृष्टिकोण से कि एडवर्टाइज जब करते हैं तब लोग ध्यान देते हैं कि भाई हां क्या है। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नड रीडर्स द सेज डिजायर टू रिवील द एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर ऑफ द ऑथर। मतलब वाल्मीकि जी स्वयं लिख रहे हैं कि इस रामायण के लेखक बड़े अद्भुत हैं। कौन है भाई, मैं ही हूं। यार ये तो अजीब बात है, शास्त्र में तो कहा गया है कि अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों, हाँ करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आपने क्यों कहा, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे तब तक लोग समझेंगे नहीं। तो इसलिए व्हाट इज दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर ऑफ द ऑथर? कोई भी ग्रंथ का लेखक अद्भुत कहलाता है जब उसका चरित्र अत्यंत लोगों के श्रद्धा का पात्र बने, सुप्रीमली ट्रस्टवर्दी, लोग उस पर पूर्णतः विश्वास कर सकें। तो अत्यंत विश्वसनीय चरित्र वाले लेखक वो अद्भुत माने गए हैं। तो वाल्मीकि का चरित्र बड़ा ही विश्वसनीय था। अब विश्वसनीय चरित्र कोई कह सकता है हम भी बड़े विश्वसनीय हैं। विश्वसनीय कौन? जो परम सत्य को यथारूप देख सके पहला, और दूसरा परम सत्य को यथारूप देखकर दूसरों के समक्ष प्रकट कर सके। One who perceives the absolute truth as it is and communicates the absolute truth as it is, that person is supremely trustworthy. Prabhupada कहते थे postal peon, अगर किसी की चिट्ठी आई है तो ऐसा नहीं कि उसको खोलकर देख ले या उसमें कुछ जोड़ दे या काट ले या कुछ कर ले फिर पहुंचा है, नहीं, यथारूप as it is. तो इसलिए वाल्मीकि ऋषि इस सुप्रीमली ट्रस्ट वर्दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको जो जो आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने उनको जो कुछ प्रकट किया, उन्होंने यथारूप सबके सामने प्रस्तुत किया। तो इसलिए यहां शब्द आया है नारदस्तु, हाँ, नारदस्य तु तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदा। तो इस विश्वसनीयता के अंदर दो पहलू हैं। पहले वाक्य विशारदा, वाक्य विशारदा के तीन अर्थ हैं। पहला, उन्होंने नारद मुनि अपने गुरु के वाक्य को सम्मानित किया, ऑनर्ड द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु, वाक्य विशारदा। दूसरा, जब कोई शिष्य गुरु के वाक्यों का सम्मान करे तब फिर वो दूसरे स्तर का वाक्य विशारद बनता है, ही बिकम स्पेशलिस्ट इन द यूसेज ऑफ वर्ड्स, तब फिर वो शब्दों के प्रयोग में निपुण हो सकता है। तीसरा, ही बिकम्स लर्नड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स, अर्थात उन शब्दों को प्रस्तुत करने में भी वो विशारद हो। यह है वाक्य विशारद। तो वाल्मीकि ऋषि क्या थे? वाक्य विशारद। विश्वसनीयता का दूसरा पहलू क्या था? धर्मात्मा। पूजयाम आस धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। धर्मात्मा शब्द का अर्थ क्या है? पहला, जिनकी बुद्धि वैदिक सनातन धर्म में सन्निहित हो, वन हूज इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड इन वैदिक धर्म। दूसरा, जिनका स्वभाव, हिज वेरी नेचर वॉज धार्मिक, जो धार्मिक स्वभाव के हो। और तीसरा, one who is aware of the dharma of obedience to the superiors, जो जानते हैं कि हाँ, जो आदेश मिले उनके सामने हमें नम्र होना है, यह है धर्मात्मा। और इसीलिए यहां उनको कहा गया है सह शिष्यो महामुनि। महामुनि कहा गया है। महामुनि क्यों? He is the best of the sages, ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ। क्यों? Because he attained the treasure of the conclusion of the Upanishads, उपनिषदों के निष्कर्ष रूपी धन को उन्होंने स्वीकार किया। तो इसलिए इनको कहा गया है महामुनि। तो सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में ऋषि शब्द का परिभाषा देते हैं देवल ऋषि को कोट करते हुए, और कहते हैं ऋषि के छह लक्षण होते हैं। ऋषि कौन है? कहते हैं ऊर्ध्व रेतां तपसी उग्रो। ऊर्ध्व रेता अर्थात जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तपसी वन हुज फियर्स इन ऑब्जर्विंग ऑस्टियर वाउज, जो उग्र तपस्या करे, केवल तपस्या नहीं, जो उग्र तपस्याओं में, भीषण तपस्याओं में लीन रहे, है कि नहीं। ऊर्ध्वरेता तपसी उग्रो नियताश्च सम नियतासी च संयमी नियत आशी, आशी अर्थात भोजन। तीसरा, जो सीमित मात्रा में अपने भोजन को स्वीकार करे, उनका अपने जिह्वा और उदर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो, नियताशी। चौथा, संयमी, जिनका सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो। पांचवा, शापानुग्रहयो शक्तः, जो अनुग्रह आशीर्वाद भी दे सके और अभिश्राप भी दे सके, जिनके अंदर अभिश्राप और अनुग्रह दोनों देने की शक्ति हो। शापानुग्रहयोर शक्तः, अर्थात पूर्व काल में जो ऋषि मुनि होते थे, जो आशीर्वाद देते थे वो पूर्ण होता था, और इसलिए जब अभिश्राप भी करते थे उसका भी असर होता था। और छठा, सत्य संधो भवेत ऋषि, वन हु एडहियर्स फर्मली टू द ट्रूथ, जो सत्य में स्थित हो। सत्य संधो भवेत ऋषि, ये ऋषि शब्द की परिभाषा है। तो इसलिए वाल्मीकि ऋषि हम जब कहते हैं, तो रामायण के विषय में सबसे पहली अद्भुत बात है, द ऑथर ऑफ रामायण वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, रामायण के लेखक अद्भुत हैं वाल्मीकि ऋषि, क्योंकि अत्यंत विश्वसनीय चरित्र वाले थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर, सुप्रीमली ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर। दूसरा, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर ऑफ द मोड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वर्क प्रोसेस। तो पहला था पर्सन, वाल्मीकि ऋषि पूजनीय विश्वसनीय। दूसरा, प्रोसेस, हाउ द रामायण वॉज रिवील्ड, जो मार्ग है, जिस मार्ग से रामायण प्रकट किया गया वो बड़ा अद्भुत था। और यहां इस बात का वर्णन आया है, क्या, श्रुत्वा वस्तु समग्रम तत् धर्मात्मा धर्म संहितम्। तो ये संपूर्ण रामायण के सार बात, सार तत्व को धर्मात्मा धर्म संहितम्, ऐसे धर्मात्मा वाल्मीकि को सुनाया गया, व्यक्तम अन्वेषते भूयो यत वृत्तम तस्य धीमता। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी प्रकट होने के पश्चात सबसे पहले नारद मुनि से तो सुना ही था कि आप इसको संकलन करो, फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपने आशीर्वाद से संपूर्ण रामायण के हर लीला को वाल्मीकि ऋषि के नेत्रों के समक्ष समाधि स्थित अवस्था में प्रकट कर दिया। उपस्पृश्योदकम संयन मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिम। तो जैसे ही ब्रह्मा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो नारद मुनि और ब्रह्मा जी दोनों का आदेश मस्तक पर धारण कर उन्होंने क्या किया, उसको सिद्ध करने के लिए प्रयत्न आरंभ किए। आदेश तो सबको मिलते हैं, लेकिन जब आदेश को पालन करने का प्रयत्न आरंभ होता है तब फिर वो आदेश का फल प्रकट होता है। तो इसलिए उपस्पृश्य उदकम, सबसे पहले अगर आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण करनी हो तो सबसे पहला कदम क्या है, स्टेप वन, उपस्पृश्य उदकम, अर्थात आचमन करके उन्होंने क्या किया, ही फॉलोड द शास्त्र, शास्त्रों के आधार पर हमें कार्य करना है, पहला। दूसरा, फिर कृतांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया, अर्थात फॉलोड द गुरु। नारद मुनि और ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करने के लिए मैं तैयार हूं, इस बात को व्यक्त किया। तीसरा, प्राचीनाग्रेषु धर्मेषु धर्मेण, देन ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन। धर्मेण अन्वेषते, अर्थात फॉलोड धर्मा, धर्म का पालन किया। तो शास्त्र का पालन किया, गुरु के आदेश का पालन किया, धर्म का पालन किया, और फिर धर्मेण अन्वेषते गतिम, और फिर रामायण के उस रामचंद्र जी के लीलाओं को और गहन रूप से स्मरण करने का प्रयत्न किया, ध्यान करने का प्रयत्न किया, क्योंकि बीज उन्होंने नारद मुनि के शब्दों के रूप में प्राप्त कर लिया था, उन लीलाओं के बीज को प्राप्त कर लिया था, उन बीजों को उन्होंने अपने ध्यान के जल से सिंचन कर ब्रह्मा जी की कृपा से सारी अनंत लीलाएं उनके समक्ष यथा रूप फलित हो गईं, अंकुरित हो गईं। उनके प्रयत्न के और उनके शिष्टाचार के प्रभाव से। और तब वर्णन आता है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी के नेत्रों के समक्ष सारी लीलाएं प्रकट होने लगी। राम लक्ष्मण सीताभिर राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः। सबसे पहले अयोध्या नगरी की सारी लीलाएं राम लक्ष्मण सीता भी, सीता देवी के साथ, राज्ञा दशरथेन च, दशरथ महाराज के साथ जो लीलाएं थी, सभार्येण सराष्ट्रेण, और दशरथ महाराज के भार्याओं के साथ जो, अर्थात माताओं के साथ कौन कौन सी लीला हुई, सराष्ट्रेण अयोध्या वासियों के साथ क्या क्या लीलाएं हुई, यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः, वो सारी लीलाएं तत्वतः प्रकट हुई वाल्मीकि के ध्यान के समक्ष। हसितम भाषितम चैव गतिर्यातत् चचेष्टितम् तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यत। संप्रपश्यत, एग्जैक्टली परफेक्टली ही सॉ द विजन। संप्रपश्यति, जो संपूर्ण दर्शन रामचंद्र जी की लीलाओं का हुआ। कैसे? हसितम, रामचंद्र जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, भाषितम, दूसरों के साथ प्रेमालाप करते हुए, गतिर्या चचेष्टितम, भ्रमण करते हुए चलते हुए, उनके बड़े दिव्य चाल चलन का दृश्य, तत्सर्वम धर्म वीर्येण, और रामचंद्र जी के वीर्य का प्रदर्शन, उसका दर्शन हुआ। यथावत संप्रपश्यति, यथावत संप्रपश्यति, ही सॉ एवरीथिंग एज इट इज। यथावत, भगवद गीता यथारूप, यथावत संप्रपश्यति, सब कुछ यथावत उन्होंने देखा। तो फिर वर्णन आया है आगे, अयोध्या की लीलाओं को छोड़कर फिर उन्होंने जंगल के अंदर भी लीलाओं का दर्शन किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं च अन्ववेक्षतम्। और रामचंद्र जी को देखा अपनी रानी और अपने भाई, अर्थात सीता देवी और लक्ष्मण के साथ, सप्राप्तं चरता वने, वन में चरण करते हुए, सत्यसंधेन रामेण, चाहे कितना भी लोगों ने उनसे आग्रह किया हो कि वन में मत जाओ, आवश्यकता नहीं, सत्य संधेन, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उन्होंने सत्य पराक्रमी अपने को प्रस्तुत किया, सिद्ध किया। सर्वम च अन्ववेक्षतम, और हर दिशा में सीता देवी को ढूंढते हुए, ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगमास्थित। इस प्रकार उस धर्मात्मा वाल्मीकि ऋषि ने, ततः पश्यति धर्मात्मा, ये लिख कौन रहे हैं, वाल्मीकि लिख रहे हैं, ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगमास्थित, योग में स्थित होने के कारण, पुरायत तत्र निर्वृत्तम पाणौ आत्मलकम यथा, पुरायत तत्र निर्वृत्तम, और हर प्रकार के दूसरे सभी कार्यों पर नियंत्रण होने के कारण, पाणौ अपने पाणी में अमलात्मकम यथा, जैसे अम्ल की फल को कोई हाथ में धारण कर ले, वैसे वाल्मीकि ऋषि के समक्ष रामचंद्र जी की सारी लीलाएं प्रस्तुत हो गईं, अर्थात वो उसके मास्टर हो गए, सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो इसलिए ही डायरेक्टली सॉ व्हाट हैपेंड टू राम। तो इसलिए क्यों यहां पे वर्णन आ रहा है, बिकॉज ही हैड टेकन अप टू योगा। तो इसलिए यथावत संप्रपश्यत और तत्सर्वम योगम आस्थित। तो प्रभुपाद जी अपने जो शब्दों में, वक्तव्यों में, कथाओं में, लेक्चरों में एक श्लोक कई बार बोलते थे, सातवें अध्याय का पहला श्लोक, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम्याम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु। योगम युंजन मदाश्रय, योग में जो स्थित होगा तब जाकर भगवान की लीलाएं उसके हृदय में प्रकट होंगी, प्रकाशित होंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कॉन्शियस कनेक्शन टू द क्रिएटर, अर्थात भगवान के प्रति जब हम संबंध स्थापित करेंगे, एंड वी कंसिलिएट हिम थ्रू अवर एक्शंस, और उनको हम संतुष्ट करने का जब प्रयास करें, तब दैट रिवील्स क्लैरिटी इन अवर कंटेम्पलेशन। तो हमारे ध्यान में स्पष्टता आती है, एंड दिस डिलीवर्स कन्विक्शन इन अवर कम्युनिकेशन। तब फिर हम जो लोगों के सामने भगवान की लीलाओं को प्रकट करें, उसमें दृढ़ संकल्प स्थित होता है, और ये वाल्मीकि ऋषि के समक्ष ये सब कुछ प्रस्तुत हो गया। तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण च महाद्युति, सब कुछ तत्वतः उनको दिख गया। फिर वही शब्द आया, राइट, तत्वतः, तत्वतः यथारूप सब कुछ दिख गया। तो इसलिए द फैक्चुअल परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपेंड बाय द फोर्स ऑफ धर्मा। तो इसलिए सारी लीलाएं उनके समक्ष प्रस्तुत हो गईं। अभिरामस्य रामस्य अभिरामस्य रामस्य चरितुम कर्तुम उद्यत। तो रामचंद्र जी के ऊपर जब वो स्मरण कर रहे थे तो इतने आनंद की अनुभूति हो रही थी। अभिरामस्य रामस्य, रामचंद्र जी का स्मरण और उनके गुणों का स्मरण इतने बड़े आनंद का कारण था। चरितुम कर्तुम उद्यत, तब जाकर वो रामचरित्र के ऊपर लिख पाए। तो यहां वर्णन करते हैं, कामार्था गुण संयुक्तम धर्मार्था गुण विस्तरम। इस रामायण में काम और अर्थ, इसका केवल परोक्ष रूप से वर्णन किया गया है, कम वर्णन किया गया है। अर्थ और काम इसके ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन धर्मार्थ गुण विस्तरम, धर्म और मोक्ष के ऊपर विस्तृत संकेत किया गया है कि नहीं। लाइट भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जो सबसे बड़ा फ्लडलाइट डाला है वो किसके ऊपर, धर्म और मोक्ष, और अर्थ और काम के ऊपर जो है अधिक प्रकाश नहीं डाला है। अर्थात वाल्मीकि जी चाह रहे हैं कि इस रामायण को सुनकर हम धर्म के प्रति और मोक्ष के प्रति आकर्षित हों, अर्थ और काम के प्रति नहीं। और इसीलिए कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रम इव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। सभी श्रुतियों में मनोहर ये रामायण ग्रंथ समुद्रम इव रत्नाढ्यम। तो जैसे समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं जब हम नीचे जाएं, तो उसी प्रकार जब हम रामायण के श्लोकों को सुनते हैं ये कान को बड़ा मनोहर लगता है, और जब अर्थ प्रकट किया जाता है मन संतुष्ट होता है। तो इसलिए सर्व श्रुति मनोहरम लाइक एन ओशन विथ ज्वेल्स। रामायण के अंदर बड़े अर्थ के सुंदर सुंदर रत्न हैं, लेकिन अगर हम उस समुद्र के ऊपर ही भटकते रहें तो उस रत्न को पकड़ नहीं पाते। तो ये सब प्राप्त हुआ उनको रामचंद्र के इन लीलाओं के ऊपर ध्यान मग्न होने के कारण। तो इसलिए ये वर्णन आया है कि दो द ओशन हैज कॉन्शल्स एंड बोन्स इट प्राइमरली कैरीज ज्वेल्स। हाँ, शंख भी है, शीपी भी है, मछली भी है, लेकिन रत्न भी है। उसे प्राप्त करने के लिए अंदर प्रवेश करना पड़ता है। वाल्मीकि ऋषि उसको प्राप्त कर लिए, इसलिए यहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए नॉट ओनली इज द पर्सन एक्स्ट्रॉर्डनरी, द प्रोसेस हाउ द रामायण वॉज रिवील्ड दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। वाल्मीकि जी मुनि के ध्यान में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यह संपूर्ण रामायण प्रकट हुआ, ये दूसरा। और रामायण के विषय में तीसरी अद्भुत बात क्या है? व्हाट इज द थर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी एस्पेक्ट ऑफ रामायण? इज द एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर ऑफ द वर्क इट्सेल्फ, रामायण इट्सेल्फ। अर्थात रामायण ग्रंथ ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। प्राप्तार राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्रम पदमात्मवान। सो द पर्सन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, द प्रोसेस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो एक्स्ट्रॉर्डनरी। रामायण ग्रंथ भी बड़ा विचित्र है। तो विचित्र पदम कहा गया है इसमें, जो शब्द रचना, जो शब्दों की रचना हुई है बड़े अद्भुत रूप से हुई है। और ये वर्णन किया गया है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, वाल्मीकि मुनि के द्वारा, कि वॉट इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लिटररी वर्क। कोई भी लेख अद्भुत कब कहलाया जाता है? जब उसके अंदर ये पांच गुण हो। सबसे पहले, इट इज कंपोज्ड बाय समवन सुप्रीमली ट्रस्टवर्दी, जब उसका लेखक बड़ा ही विश्वसनीय हो। दूसरा, When the subject is worthy of pious glorification, जो विषय हो वो स्तुति के योग्य हो। तीसरा, When that subject is respectfully recognized by great personalities, जब विषय और ग्रंथ महान व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत हो और पूजनीय हो। चौथा, जब उस ग्रंथ का मुख्य पात्र बड़ा ही पूजनीय हो। When that work is glorified because of the hero of that work, जो कि यहां रामचंद्र हो। और इसीलिए, और पांचवा, ने ये चार मुख्य बताए हैं, चार प्रमुख अंग। इसलिए प्राप्ता राज्यस्य रामस्य, तो इन कारणों से न केवल लेखक अद्भुत हैं, जिस माध्यम से उन्होंने उस संपूर्ण लीला को अपने समक्ष स्वीकार किया, देखा, दर्शन किया, वो अद्भुत है, और ये ग्रंथ भी अद्भुत है। तो इन कारणों से रामायण को बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ बताया गया है। इट इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेचर। तो अब प्रस्तुत हुआ है कि क्योंकि सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया और पहला प्रश्न क्या था कि ये प्रभु कौन है, ये परम सत्य कौन है, ये विष्णु है कि देवता है, तो उसके उत्तर में कहते हैं भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए और इस बात की पुष्टि हुई है हर प्रकार से। तो इसलिए यह वर्णन आया है कि अगर किसी भी ग्रंथ के विषय को समझना हो कि ये वाले पर्टिकुलर ग्रंथ में मुख्य थीम क्या है, तो उसको समझने के लिए 6 उपाय हैं। उपक्रम अर्थात उस ग्रंथ के आरंभ में क्या कहा गया है। तो रामायण के आरंभ में कहा गया है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही विष्णु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ग्रंथ के आरंभ में जो प्रस्तुत हो वो देखना चाहिए। तो बालकांड में हम देखते हैं क्या, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमत्वशी। तो बालकांड में रामचंद्र को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान। तो भगवान वो हैं जो द्युतिमान है, विज्ञान घन है, धृतिमान है, आनंद ब्रह्म है, वशी सर्वस्य वशी सर्वस्य ईश्वर है। ये बालकांड का अर्थात प्रथम अध्याय का ही 8वां श्लोक है। तो अगर किसी ग्रंथ के आरंभ में अगर उस तत्व का वर्णन किया जा रहा है तो यह पहला प्रमाण है कि राम भगवान है, वही विष्णु रामचंद्र के रूप में भगवान के रूप में प्रकट हुए। परम ब्रह्म कौन है, विष्णु। परम ब्रह्म कौन है, राम। आरंभ में आ गया, ये इसको कहते हैं उपक्रम। रामायण के अंत में देखो उत्तरकांड का श्लोक, उसको कहते हैं उपसंहारो। उपक्रम उपसंहारो, उपसंहार अर्थात व्हाट इज द कंक्लूजन। जब ग्रंथ समाप्त हो रहा हो उस समय वही थीम फिर रिपीट होता है क्या? हां हो रहा है। उत्तरकांड में संक्षिप्य च पुरा लोकान मायया स्वयं एव ही महार्णवे शयार्णोपौ माम त्वं पूर्वम अजीजन। फिर उत्तरकांड में भी ये वर्णन आ रहा है कि प्रभो आप ही इस संपूर्ण जगत को समाविष्ट करते हो, आप ही मुझे प्रकट करते हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हो कि आप ही सभी ब्रह्मांडों के स्रोत हो, आप ही मैं ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता हूं उसके भी आप स्रोत हो। तो सृष्टि के भी स्रोत आप, सृष्टिकर्ता के भी स्रोत आप, वही आप विष्णु हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी उत्तर कांड में अंत में स्तुति कर रहे हैं। तो कंक्लूजन, तो एक तो आ गया उपक्रम आरंभ में बिगिनिंग, उपसंहारो कंक्लूजन, दोनों जगह आ गया प्रमाण कि भगवान रामचंद्र हैं। अब तीसरा अभ्यासो अपूर्वता फलम, तीसरा प्रमाण क्या है किसी तत्व को सिद्ध करने के लिए, रिपीटिशन। बारंबार वो तत्व कितनी बार दोहराया जाता है पूरे ग्रंथ में, पूरे रामायण में ये तत्व कितनी बार प्रमाणित हुआ है, प्रकाशित हुआ है, दोहराया गया है अलग अलग पात्रों के द्वारा। हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस कंक्लूजन बीइंग रिपीटेड इन रामायण, दैट राम इज द सुप्रीम लॉर्ड, राम इज विष्णु, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। जितनी बार प्रमाणित होगा, प्रकाशित होगा, दोहराया जाएगा, ये उस बात का प्रमाण है। इसको कहते हैं अभ्यासो, है कि नहीं। तो इसके विषय में हम देखते हैं बालकांड में, बालकांड में ब्रह्मा जी उनको वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। सारे देवता के पास जब विष्णु के पास जाते हैं तब फिर उनकी स्तुति कर रहे हैं। विश्वामित्र दशरथ महाराज के जब दरबार में हैं तो विश्वामित्र जब कहते हैं कि भाई आप कृपा करके रामचंद्र को और लक्ष्मण को दे दो दक्षिणा के रूप में, क्योंकि जैसे ही जाते हैं तो दशरथ महाराज मूड में आके बोलते मांगो। तो विश्वामित्र कहते मांगू क्या, बोले अरे मांगो, मांगू क्या, अरे मांगो, क्या मांगते हो, बेटा दे दो। तो दशरथ महाराज को झटका लगता है, बोलते अरे भाई बड़े बड़े असुरों और राक्षसों का वध करने के लिए आप मेरे पुत्र को मांग रहे हो? अरे मैं दशरथ 60,000 वर्षों से मैं यहां राज्य कर रहा हूं, बड़ी सेना है, मैं अपने सभी सेनापतियों के साथ आपकी सेवा में सम्मिलित हो जाऊंगा। रामो राजीव लोचन, राजीव लोचन है, अर्थात जैसे कमल पुष्प की पंखुड़ी सूर्यास्त के पश्चात वो बंद हो जाती है, वैसे ही जैसे ही सूर्यास्त होता है इसकी आंखें बंद हो जाती है, बच्चा है। और वो निशाचर है, वो नाइट शिफ्ट वाले लोग हैं, और फिर उनके साथ ये कैसे युद्ध करेगा? इसको रात को जागने की आदत ही नहीं, युद्ध क्या करेगा? छोड़ो इसको, मैं चलता हूं, ये बच्चा है, ये युद्ध नहीं कर सकता, अरे कोमल भुजाएं हैं उसकी, धनुष भी नहीं उठा सकता। तब उसको सुनकर विश्वामित्र मुनि कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। आप मुझे बता रहे हो ये कौन है? अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे ब्रह्मांडों को इच्छा शक्ति से उठा कर रखे हैं, समझे क्या? अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, ये परम सत्य है और परम पराक्रमी है। आप मुझे लेक्चर मत दो कि ये कौन है कि रात को सो जाता है, अरे कभी सोते नहीं है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टा पुल्टा फिलॉसफी सुना रहा हूं आपको कि आपके बेटे को परम सत्य बता रहा हूं, वशिष्ठोपि महातेज, अचानक विश्वामित्र मुनि का वशिष्ठ के प्रति प्रेम आ गया और बोले अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ पूछो जिनके साथ सनातन मैंने केवल युद्ध किया है, जो मेरा नंबर वन शत्रु है, ये बैठा है यहां पर आपका गुरु वशिष्ठ। हम लोग ने आपस में कभी भी कोई वार्तालाप नहीं किया, केवल युद्ध ही किया है, उससे पूछो। हम लोग की कभी दो बातें मिलती ही नहीं, लेकिन ये बात वो मानेंगे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूछो। तो इसलिए यहां कहते हैं इमे तपसी स्थिता। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि ने उसको इस बात को सिद्ध किया बालकांड में। और फिर और यहां वर्णन आता है सीता देवी के, जो जनकपुर में मिथिला में जब वो उनका विवाह हो रहा था उस समय भी उन्होंने प्रस्तुत किया इस बात को विश्वामित्र मुनि, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर परशुराम ने ये भी जब बालकांड में परशुराम जब मिलते हैं वो भी कहते हैं अधिकम मेनिरे विष्णुम देवास अग्रणस्तथा, ये सभी देवताओं के अग्रणी हैं, विष्णु हैं ये सर्वप्रथम हैं। उसी प्रकार बालकांड के जैसा ही अयोध्या कांड में भी देवतागण भगवान श्री विष्णु के विषय में वर्णन करते हैं। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि जब रावण को सूर्पणखा जाके कहती है, क्योंकि सूर्पणखा की नासिका कट गई, अब वो भागी भागी जा रही है, अब सोचती है कि मैं कैसे, खर और दूषण भी समाप्त हो गए, अब कैसे मैं रावण को उत्तेजित करूं, तो कहती है कि रावण को बोलूं कि आपके अंतःपुर में इतनी सर्वांग सुंदरियां हैं लेकिन सीता जैसी कोई नहीं, तो अवश्य उसका मन ललचा जाएगा। तो सूर्पणखा जाकर रावण के सामने सीता देवी के सौंदर्य का प्रखर वर्णन करती है। तब तक रावण अपने में मस्त है, वो लंका में अपने सब रानियों के साथ है, यहां वहां कभी वो किसी को लेके आ जाता है जो भी हो, लेकिन रामचंद्र और सीता देवी के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन जैसे सूर्पणखा आकर रावण को कहती है कि अरे तुमको क्या लगता है सभी रानियों का तुम भोग कर रहे हो, लेकिन जो असली जो रानी है उसको तो तुमने स्पर्श ही नहीं किया है, तो रावण कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास बहुत है पहले, अरे सुनो तो। और उसके बाद फिर सीता देवी के हर अंग का जब वो वर्णन करती है तब रावण के 10 सर बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य चरण प्रभु अपना आर्टिकल लिखते हैं द ओरिजिनल इंटरनेट सूर्पणखा कि मन शांत है, हम संतुष्ट हैं अपने आप में, लेकिन इंटरनेट पे अपन देखते हैं कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, किसी ने ये किया वो किया, इसने ये झंडा गाड़ा, इसने ये तंबू बांधा, ये पर्वत शिखर पे चढ़ गए, और अपने को लगता है अरे अपन क्या किए। ओरिजिनल इंटरनेट पूरा आर्टिकल लिखा है उन्होंने कि सूर्पणखा ने आके जो एजिटेट किया रावण को यहां वहां की बातें सुनाकर, तो वहां से फिर रावण गए मारीच के पास, और मारीच बैठकर केवल राम के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, और रावण ने उसको कहा कि अब राम को पकड़ के लाना है, अब राम के पास जाना है मृग बन के। तो मारीच उनको कहता है प्रसिद्ध लंकेश्वर राक्षसेंद्र, अरे राक्षसों के इंद्र प्रसन्न रहो, प्रॉब्लम है क्या लाइफ में, लंकाम प्रयच्छ भव साधु गच्छ, मैं देख रहा हूं कि 10 सर और हाथ और पैर के साथ आए हो, ऐसे ही यथारूप वापस जाना चाहते हो कि नहीं बिना सर्जरी के, लंकाम प्रयच्छ भव साधु गच्छ त्वम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, अरे कोटि कोटि जो रानियां हैं उनके साथ प्रसन्न रहो, आपके पास क्या कमी है, दारेषु अर्थात पत्नियां, तो आपके पास दारा भी है दारू भी है, और क्या चाहिए, हमेशा वो बिल्कुल नशे में रहता था, एक तो मदिरा का नशा और दूसरा भोग विलास का नशा, तो बहुत ही एक शुभ चिंतक के रूप में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। रमस्व नित्यम राम सभार्याम रमताम वनेशु, राम को अपने भार्या के साथ वन में भ्रमण करने दो, क्या है आपका जीवन चल रहा है, तो रावण बड़ा उत्तेजित हो जाता है और चिल्लाने लगता है अरे मैं तुमसे शिक्षा लेने थोड़ी आया हूं यहां पर, तुमको मैं कार्य पे लगाने आया हूं। तब वो उनको कहते हैं अप्रमेयम हि तत्तेजो तस्य स जनकात्मजा राजा सर्वस्य कालस्य दावानी मघवान इव, ये रामचंद्र जैसे देवताओं में इंद्र हैं वैसे सभी जीवों के स्वामी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और पहले भी जब हमने ऋषि मुनियों के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तब रामचंद्र जी ने अपने बाण से हमें 800 मील दूर उठा के फेंक दिया, और वो चोट अभी भी मुझे याद है। फिर एक मित्र के साथ, एक और दूसरे असुर के साथ हम राम पर आक्रमण करने गए, जैसे राम ने अपना बाण उठाया मैं तो भाग गया, लेकिन मेरा मूर्ख मित्र भागता चला गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, और तब मैं भागा भागा यहां पर आकर उस दिन से मैं रामचंद्र के केवल स्मरण से आतंकित रहता हूं, चारों तरफ मैं घड़ी घड़ी देखता रहता हूं कि राम तो नहीं आ गए, और कोई शब्द भी कहता है रथ तो मुझे लगता है राम बोल रहा है, र शब्द से कोई भी अगर वर्ड स्टार्ट हुआ तो मुझे राम इस तरह लगता है और मैं घबरा जाता हूं। तो रावण ने कहा कि भाई जो कुछ भी तुम्हारा फिलॉसफी अपने पास रखो, तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, मल्टीपल चॉइस नहीं, दो ही चॉइस है, एक मेरे हाथों मरो या राम के हाथों मरो। तब मारीच ने चूज किया इनके हाथों मर के नरक में कौन जाना है, कम से कम उनके हाथों हत्या होगी तो कुछ उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। तो अरण्य कांड में इसका वर्णन है कि राम ही भगवान है, मारीच कहते हैं। किष्किंधा कांड में तारा वाली को कहती है कि नहीं, ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशु निरतोपितु धातुनाम इव शैलेन्द्रो गुणानाम आकरो महान, कि यही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, निरत पितु वो सभी जीवों के स्वामी हैं, और जैसे पर्वतों में हिमालय वैसे ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इसलिए उस समय तारा भगवान को स्वीकार करती हैं और उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो वाली जो हैं मन के प्रतीक हैं, सुग्रीव बुद्धि के प्रतीक हैं, मन हमेशा बुद्धि के ऊपर हावी होकर उसे न केवल अपने विवेक शक्ति के साम्राज्य से निष्कासित करने का प्रयास करता है लेकिन उस विवेक शक्ति की हत्या करने का भी प्रयत्न करता है, ये मन का नित्य कार्य है। तो वाली इंद्रपुत्र, इंद्र जो कि मन के स्वामी हैं, और ये सूर्य पुत्र, सूर्य जो कि बुद्धि के स्वामी है. माइंड एक्सपेल्स द इंटेलिजेंस एंड डोमिनेट्स लाइफ. माइंड नॉट ओनली डोमिनेट्स विजडम बट इट ट्राइज टू एक्सटर्मिनेट और किल द विजडम, डिस्ट्रॉय द विजडम. तो इसलिए मन को अगर हावी करना हो, मन के ऊपर नियंत्रण करना हो, तो जो शिथिल बुद्धि को चाहिए कि वो प्रभु का आश्रय ले. श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम. जब हम भागवत पढ़े, श्रवण करें, उससे बुद्धि सशक्त होती है, तब फिर भगवान उस मन का वध कर पाते हैं. तो ये है यहां पर किष्किंधा कांड का वर्णन. इसमें भगवान के रूप में रामचंद्र को तारा प्रस्तुत करती है. हनुमान जी सुंदर कांड में रावण के सामने जब उनको बांध कर लेके आते हैं, तो हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं. ब्रह्मा स्वयं भो चतुरा ननो वं रुद्रश्च त्रिनेत्रस् त्रिपुरांतकाते इंद्रो महेंद्रस् सुरनायको वं त्रातुम न शक्ता युधि राम वध्यम. कहते हैं, अरे रावण, तुमको क्या लगता है आप रामचंद्र जी के ऊपर युद्ध के माध्यम से जीत सकते हो? ब्रह्मा स्वयंभू, हाँ चतुराननोवा, अरे चाहे वो चतुरानन स्वयंभू ब्रह्मा जी, रुद्रस त्रिनेत्रस, जो रुद्र जिनके तीन नेत्र हैं, त्रिपुरांतकोवा जिन्होंने त्रिपुर उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, इंद्रो महेंद्रस सुरनायकोवा जो इंद्र हैं जो कि सभी देवताओं के स्वामी हैं, त्रा तुम न शक्ता, वो कभी भी अपने शत्रु को हरा नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते. युधि राम वध्यम, और वो कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकते जब तक रामचंद्र जी उनके साथ न हो. और आपको क्या लगता है आप उस रामचंद्र जी को युद्ध में आप जीत जाओगे? अरे उन लोगों ने अपने जितने भी इतिहास में युद्ध में विजय प्राप्त किया है वो केवल रामचंद्र जी की कृपा से, और आप उस रामचंद्र को युद्ध में पराजित करोगे? पागल हो गए हो क्या? तो हनुमान जी फटकारते हैं रावण को. प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा, श्रील प्रभुपाद, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कुत्ता निकाला है जिसके दो सर हैं. प्रभुपाद ने कहा, तो क्या हो गया? रावण के भी 10 सर थे और बहुत बड़ा कुत्ता था. दूसरों की संपत्ति के ऊपर वो दृष्टिपात करता था, है कि नहीं? तो बारंबार उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन यहां पर हनुमान जी सुंदरकांड में उसका वर्णन कर रहे हैं. सीता देवी के पास जब हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, सीता देवी अशोक वाटिका में है, रावण उसके सामने आ गए और सीता देवी एक घास का तिनका लेकर दोनों के बीच डालती है. वो घास का तिनका क्यों डाला, इसके ऊपर आचार्य कई कारण बताते हैं. पहला, वेदों में, वैदिक सभ्यता में कोई आए तो उसको आसन देना चाहिए स्वागत के रूप में, तो स्वागत के लिए कोई आसन नहीं था, पूरी चटाई नहीं थी, एक तिनका था, तो आसन के रूप में शिष्टाचार पालन किया. दूसरा, पुरुष और स्त्री के बीच कुछ औपचारिकता हो, फॉर्मेलिटी हो, तो एक उन्होंने बैरियर खड़ा किया इस तिनके के रूप में. तीसरा, रावण उनको कह रहा था, मैं तुमको इतना धन दूंगा, ये धन दूंगा, वो धन दूंगा, मेरी रानी बन जाओ. सीता देवी कहते, तुम जितना धन की बात करते हो मेरे लिए तिनके बराबर है, ले, तो तिनका डाल दिया. फिर सीता देवी कह रहे हैं कि तुमको मैं समझाने का प्रयत्न करे तुम मानते नहीं, जैसे ये तिनका कुछ को बोलो तो वो सुन नहीं सकता, वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी क्या भरा हुआ है, भूसा, ये लो. इस तरह व्यंग कर रही है. फिर कहती है कि वास्तव में आपकी शक्ति इत्यादि तो तिनके के बराबर है ही, लेकिन मैं भी अपने जीवन को बचाने के विषय में बहुत अधिक सीरियस नहीं हूं. मेरे लिए मेरा जीवन ये तिनके के बराबर है, मेरा जीवन समाप्त तो हो जाए चलेगा, लेकिन मैं रामचंद्र जी को नहीं छोड़ूंगी। हां, और जो धर्मेन हीन पशु भी समान, धर्म इत्यादि को छोड़कर आप पशु की तरह व्यवहार कर रहे हो तो पशु ही हो तुम, इसलिए पशु ये लो घास खाओ, इसलिए वो तिनका डाला। और फिर वो कहना चाहती है कि रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ आकर कुछ समय के पश्चात जब आपके सारे सोने के महलों को पिघलाएंगे और जब रहने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तब ये घास का तिनका लेकर अपना कुटिया बना लेना, काम आएगा। तो इस तरह सीता देवी रामचंद्र जी के भगवत्ता का वर्णन कर रही हैं सुंदर कांड में। तो सुंदर कांड में भी भगवत्ता का वर्णन है। फिर उसके बाद आता है युद्ध कांड, और युद्ध कांड में विभीषण तो बार बार इसका वर्णन करते ही हैं। और विभीषण जब रावण को कहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन रावण उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि रावण को लगता है कि ये कौन व्यक्ति है मुझे समझाने वाला है। तो इसलिए विभीषण विचार करते हैं कि इनको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए अब्रवीत तदा वाक्यम जात क्रोधो विभीषण अंतरिक्ष गत श्रीमान भ्रातरम राक्षसाधिपम। विभीषण क्रोधित होकर रावण को त्याग कर जब अंतरिक्ष में जाते हैं अपने चार मंत्रियों के साथ, उनको कहा गया है श्रीमान, अरे संपूर्ण लंका के सोना को छोड़कर जो जा रहे हैं, ऐश्वर्य को त्याग कर जा रहे हैं, वो तो कंगाल होकर जा रहे हैं, उनको श्रीमान क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों के आश्रय की शक्ति को समझ गए। तो इसलिए उनके साथ जो चार प्रतिनिधि चले, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये कौन है चार? ये चार हैं विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और साम और दान। ये साधना के चार अंग, विवेक अर्थात शरीर और आत्मा के बीच, उचित अनुचित के बीच विवेक। दूसरा वैराग्य, किसे स्वीकार करना है किसे अस्वीकार करना है। मुमुक्षुत्व, भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा। और शमदान, अपने मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति और सामर्थ्य। या अकिंचनत्वम, चार मंत्री ये भी हैं, अकिंचनत्वम हमारा कोई नहीं, अनन्य गतित्वम हमारी कोई गति नहीं, सरलता भगवान किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं, और शक्ति भगवान किसी भी व्यक्ति को आश्रय दे देते हैं। तो ये युद्ध कांड में हम विभीषण के द्वारा भगवान की स्तुति देखते हैं, और रावण को परित्याग कर वो रामचंद्र जी का आश्रय लेते हैं, जिसको देखकर रामचंद्र प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं आपको स्वीकार करता हूं। कौन सा श्लोक है प्रसिद्ध? सकृद एव प्रपन्नोयत तब अस्मि इति याचे। जो व्यक्ति एक बार भी आकर कहे कि मैं आपका हूं, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवान रामचंद्र जी अपनी भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी कांड में रिपीटेड ये तत्व आया है, बारंबार इस बात को ध्वनित किया गया है, इसलिए इसको रिपिटिशन के अंतर्गत लिया गया है। फिर अभ्यासो अपूर्वता फलम, उपक्रमा उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम। अपूर्वता फलम अर्थात इसके अंदर एक नॉवेल्टी है, देर इज अ नॉवेल्टी। अपूर्वता अर्थात एन अंडरस्टैंडिंग दैट कैन कम फ्रॉम नो अदर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो इसलिए रामायण में भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, इसको समझना हो तो केवल रामायण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अन्य किसी भौतिक ग्रंथ के माध्यम से हम नहीं प्राप्त कर सकते। इट हैज टू बी फ्रॉम स्पिरिचुअल सोर्सेस। इसलिए ये अपूर्वता नॉवेल्टी भी रामायण में है। चौथा, पांचवा रिजल्ट फलम, द रिजल्ट ऑफ सरेंडरिंग टू राम इज अटेनमेंट ऑफ हिज अबोर्ड, है कि नहीं? तो ये अंत में ये बताया गया है कि अयोध्यावासी सभी अंत में रामचंद्र जी के साथ उनके वैकुंठ लोक में गए। तो इसको कहते हैं फलम, कि फल भी हम इसमें देखते हैं। और छठा प्रेज एंड लॉजिकल रीजन, इसको कहते हैं अर्थवादो उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। जो छठा चिन्ह है इस तत्व को प्रमाणित करने के लिए, दैट इज द प्रेज एंड लॉजिकल रीजन, जो सबसे अधिक जिसकी स्तुति हुई है, विच इज प्रेज्ड, और लॉजिक के आधार पर, जैसे सारे जो बालकांड में आता है प्रसंग, सारे देवतागण प्रश्न करते हैं शिवजी महान है कि विष्णु महान है, फिर दोनों का युद्ध करवाते हैं, और जब युद्ध चलता रहता है और ब्रह्मा जी रेफरी, और फिर अचानक अपनी शक्ति से भगवान श्री विष्णु शिवजी के अस्त्र को स्थगित कर देते हैं, उनका मन को भ्रमित कर देते हैं, और तब सारे देवता देख लेते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने अपनी शक्ति से उनको पराजित किया। तब बड़े क्रोधित होकर शिवजी अपना बाण, धनुष बाण जो शिव चाप है, महेश चाप, वो जनक महाराज के पूर्वज राजा के हाथ में पकड़ा देते हैं, तब से उनके परिवार में वो आया। तो इसलिए यहां यह वर्णन आता है कि तब फिर सारे देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इस निष्कर्ष पे आए, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इट वॉज डिड्यूस्ड बाय लॉजिकल रीजनिंग, कि हाँ भाई, हमने एक तर्क के आधार पर इनको भगवान के रूप में आज देख लिया, कि सबसे शक्तिशाली तत्व शिवजी को भी उन्होंने पराजित कर लिया। सो प्रेज एंड लॉजिकल रीजन। और दूसरा एक आता है जटायु के मोक्ष के समय, या गतिर यज्ञ शीलानाम आहिताग्नेश्च या गति अपरावर्तिनम याच याच भूमि प्रदायिनाम। तो रामचंद्र जी जब अपने मानव स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी भगवत्ता को एक झलक दिखा दिए, किसी को भगवत धाम मृत्यु के बाद भेजने की शक्ति केवल उनकी है, तो उन्होंने कहते हैं, तो यहां पर लक्ष्मण के सामने कहते, लक्ष्मण आज मैं इस जटायु को अपने ही धाम वैकुंठ में भेजूंगा, जो यज्ञशील और हर प्रकार के दूसरे तपस्याओं के बाद जो गति को प्राप्त करते हैं, अपरावर्तिनाम याच याच भूमि प्रदायिनाम, और जो प्रचुर मात्रा में दान पुण्य करके जो गति प्राप्त होती है, मया त्वं संयुनिता गच्छ गच्छ लोकान अनुत्तमान गृध्र राजा महासत्व संस्कृतश्च मया ब्रज। ये गृध्र राजा जो पक्षियों के राजा, गृध्रों में राज हैं, जिनका नाम है जटायु, संस्कृतश्च मया ब्रज, मेरे द्वारा अंतिम संस्कार प्राप्त करने पर वो वैकुंठ में पहुंच जाएगा। अर्थात रामचंद्र जी ने इस लीला के माध्यम से अपनी भगवत्ता को प्रस्तुत की। तब लोग कह सकते, अच्छा रामचंद्र जी ने जटायु को वैकुंठ पहुंचा दिया, मतलब इसका अर्थ है कि हाँ वो भगवान है। तो इट इज अ लॉजिकल डिडक्शन। तो इसलिए उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्व फलम और अर्थवादो, ये छह विषयों के माध्यम से ये प्रस्तुत किया गया है कि उन उपनिषदों में जो परम ब्रह्म है वो कौन है। वो 33 कोटि देवता नहीं, वो 33 कोटि देवताओं के स्वामी विष्णु, वही विष्णु रामचंद्र जी के रूप में इस जगत में प्रकट होकर जो वर्तमान बद्ध जीव हैं, उन जीवों के चित्त को आकर्षित कर पुनर्भगवत धाम लेके चलने के इस दृष्टि से वो आए हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र सीता देवी को लंका में देखकर विचार करके सोचते हैं कि सीता देवी लौट के आना चाहती है कि नहीं, वो जीव मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है कि नहीं। जब इस विषय में, किसी के रिलेशनशिप और संबंध के विषय में संशय हो, संदेह हो, तो व्यक्ति असमर्थ होता है कि वो स्वयं जाके उस संबंध को प्रस्तुत कर सके। वो मध्यस्थ को भेजते हैं, रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजते हैं। रामचंद्र जी निस्सहाय हो जाते हैं कि मैं उस जीव को नहीं लेके आ सकता, इसलिए वो वानर सेना के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वा नर अर्थात जो नर के समान दिखे लेकिन वास्तव में नर न हो, पशु हो। उसी प्रकार महान वैष्णव भी दिखने में नर लगते हैं लेकिन वा नर अर्थात वो इस जगत से परे होते हैं। तो वानर सेना अर्थात वैष्णवों का समुदाय, जो कि जैसे वानर वृक्ष में भ्रमण करते हैं वैसे शाखा मृग अर्थात वेदों के विभिन्न विज्ञान की शाखाओं में, वेद के ध्वनियों के शब्द की शाखाओं में जो विचरण करे, जो इस शब्द ध्वनि में निरंतर रमे रहे, ऐसे वैष्णव ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए भटके हुए जीव को प्रथम संदेश दे पाते हैं। और तब भगवान ऐसे वैष्णवों के ऊपर आश्रित होते हैं कि भाई आप जब तक साथ न दोगे मैं इस भटके हुए जीव को इस शरीर रूपी लंका और मन रूपी रावण से बचाकर अपने साथ अपनी सेवा में सम्मिलित नहीं कर सकता। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भले हूं, भगवान हूं, हर प्रकार के कार्य में मैं स्वराट हूं, समर्थ हूं, लेकिन एक कार्य में पूर्णतः आश्रित हूं वैष्णवों की कृपा पर कि वो वैष्णव मेरी सहायता करें, मेरे मिशन में उन भटके हुए जीवों को पुनर् मेरी सेवा में स्थापित करने। इसलिए हनुमान जी गुरु के प्रतीक हैं और संपूर्ण वानर सेना ये वैष्णवों के सेना का प्रतीक है। और संपूर्ण रामायण के माध्यम से, न केवल साक्षात कविता के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से कथा और लीला का प्रसारण है, लेकिन इस लीला के साथ साथ एक ध्वन्यार्थ भी आचार्यगण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे ये राम आयण हर जीव का प्रभु रामचंद्र जी के प्रति पुनर्संबंध स्थापित करने के पीछे प्रभु रामचंद्र जी का प्रयास भी इसमें सम्मिलित है। इसको प्रकाशित रामायण के इन पन्नों के माध्यम से किया जा रहा है। आज दशहरा के उपलक्ष पर, विजयदशमी के उपलक्ष पर हम प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने इन सभी वैष्णवों को हमारे जीवन में भेजा है, इन वैष्णवों का हम आश्रय लें और उनके चरणों की सेवा में सम्मिलित हो जाएं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, प्रभु रामचंद्र जी भगवान की, श्री रामचंद्र विजय दशमी महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की। ताय गौर प्रेमानंदी।